ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराष्ट्रभागवतम स्कंद 8 अध्याय 23 श्लोक संख्या 16। मंत्रस्तंत्र तच्छिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निच्छिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के अनुवाद। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती है। देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती है। किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस कला तथा दिखावे के योग में उद्धार का केवल एक ही साधन है और वह है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस कलयुग में वैदिक कर्म कांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सकता हो। अतः इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वह है संकीर्तन, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति हि सुमेधसा। जो लोग बुद्धिमान है और जिनके पास अच्छी दिमाग की शक्ति है वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस प्रकार से यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपया खर्च करने की लत है। ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण ज्ञान यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति हि सुमेधसा। यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांड ब्राह्मण थे किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया। निच्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। कलयुग में वैदिक कर्मकांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए श्री शिव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का अध्यात्म कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतया दैव पूजा में फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह सकती है और मनुष्य को चाहिए कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्तशरज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदामयं ददाति स्वपदान्तिकां। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष तिथि है और विशेष दिन है। भगवान और उनके एक महान भक्त भगवान वामन देव और श्री लक्ष्मी गोस्वामी का आविर्भाव है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हैं जिनका नाम स्वरूप दामोदर। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान वामन देव की लीला के बारे में, कैसे भगवान वामन देव बलि महाराज को अपना बनाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर कहते हैं, जहां भागवत पढ़ भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। किसी व्यक्ति को भागवत यदि सही में पढ़ना है या भागवतम को सीखना है, भागवतम का अध्ययन करना है, तो उसे वैष्णव भक्त के पास जाना चाहिए जो वास्तव में भागवतम को जानता है। इसलिए हमें भागवतम एक भागवत भक्त से ही सीखना चाहिए, तभी भागवतम में हमें क्या मिल सकता है, प्रवेश मिल सकता है। तो भागवतम में प्रवेश तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की भावना होगी। इसलिए व्यासदेव या शुकदेव गोस्वामी भागवतम की शुरुआत से ही वर्णित करते हैं, निर्मत्सराना सता। ये ग्रंथ केवल ईर्ष्या रहित भक्तों के लिए है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मैंने ये आंदोलन बनाया है भागवत भक्त बनने के लिए। तो कभी कभी लोग कहते हैं, अरे इस्कॉन में सब कुछ लग्जरी है। लग्जरी शब्द सुना है आपने? तो कभी कभी हमें कहते हैं वहां सब कुछ लग्जरी लाइफस्टाइल है। तो प्रभुपाद भी एक बार कह रहे थे, प्रभुपाद को किसी शिष्य ने पूछा, क्यों नहीं भक्त ज्वाइन करते, सारे लोग क्यों नहीं इस आंदोलन को ज्वाइन करते। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, यहाँ सब कुछ नंबर वन है, यहाँ के ग्रंथ है, यहाँ का प्रसाद है, यहाँ के विग्रह की आराधना है, यहाँ का कीर्तन है, तो सब कुछ नंबर है, नंबर वन है, फिर भी लोग इसको ज्वाइन नहीं करते या पकड़ते नहीं, स्वीकार नहीं करते। तो प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि जो नंबर वन के मूर्ख होंगे वही ये नंबर वन की प्रक्रिया स्वीकारेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे। तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि इस्कॉन में एक चीज बहुत लग्जरी है। कौन सी चीज लग्जरी है बताइए? भक्तों का संग। क्या है लग्जरी? भक्तों का संग। हमें सबको लग्जरी में प्रसाद याद आता है, लेकिन वैसे देखा जाए कि इस्कॉन में सबसे अच्छी चीज कोई है तो वो भक्तों का संग है, जो लग्जरियस है। इतने बड़े बड़े उन्नत उन्नत भक्त जिनके द्वारा हम वास्तव में भगवत लीला में या भागवतम में प्रवेश कर सकते हैं, उनसे सुनना अति उत्तम है। इसलिए किसी लग्जरी की डिजायर करनी है हमारे हृदय में तो एक ही चीज की इच्छा करनी है कि हे कृष्णा, मुझे आपके भक्तों का लग्जरी एसोसिएशन दे दो, जिसमें क्या रहे, मैं उन भक्तों के बीच में बना रहूं। और भक्तों के बीच में बने रहने से लाभ क्या है? कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो लग्जरी भक्त है उसका गुण क्या है? वो सदैव कृष्ण का गुणगान करता है, सदैव भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान के नामों का उच्चारण में लगा रहता है। वो वास्तव में लग्जरी भक्त है या लग्जरियस एसोसिएशन है। तो इसीलिए हमें ये महसूस करना चाहिए कि वास्तव में ऐसा जो संघ प्रभुपाद ने दिया है वो अति उत्तम है, और हमें सदैव सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसलिए श्रीमती राधा रानी का एक नाम है विद्यार्थिनी। क्या नाम है? विद्यार्थिनी। एक होता है विद्यार्थी और दूसरा होता है विद्यार्थिनी। तो राधा रानी का विद्यार्थिनी नाम क्यों है? तो आचार्य कहते हैं कि राधा रानी निरंतर सीखती रहती है नई नई चीजें कृष्ण की सेवा के लिए। इसी कारण से राधा रानी का एक नाम क्या है शास्त्रों में? विद्यार्थिनी। मतलब जैसे आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं ना, विंडो अपडेट्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अपडेट, हम अपडेट करते रहते हैं उसको, या फिर मोबाइल्स के भी सीरीज आते हैं, तब सोचते ये सीरीज पुराना हो गया, अभी नया सीरीज जो आया है वो लेता हूँ। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी अपना ज्ञान, अपनी एबिलिटी, अपना स्किल, ये सब क्या करती है? बढ़ाती है, इसलिए सीखती है। यदि कोई पूछे क्यों राधा रानी को क्या आवश्यकता है बारंबार सीखने का, तो शास्त्र कहते हैं क्योंकि कृष्ण कारणीभूत है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का एक नाम है नव नवायनम च, कि कृष्ण हमेशा नए है और कृष्ण हर रोज बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हाँ, इसी कारण से राधा कृष्ण चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नए हैं, तो राधा रानी को भी क्या है, हर चीज नई नई सीखनी होती है। अभी किसी का एक ही लाइफ स्टाइल है तो पत्नी को इजी हो जाता है उसका सेवा करना, है ना, लेकिन हर रोज बदल रहा है नई चीजें, तो फिर उसको सीखना होगा। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी निरंतर सीखती हैं। तो उससे हमें क्या सीखते हैं हम, कि हमें भी अपने भक्तिमय जीवन में आखिरी सांस तक क्या करना है, सीखते रहना है। भक्ति ऐसी प्रोसेस नहीं है कि अभी जब करना आ गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक माला, इस मनके से उस मनके तक, उस मनके से इस मनके तक, इतना आ गया ये काफी नहीं है। हमें क्या करना होगा, भगवत भक्ति में प्रतिदिन सीखना होगा। हाँ, और राधा रानी क्यों सीखती है, केवल राधा रानी ही जानती है कि कृष्ण की सेवा कैसे करो। और यदि कोई भक्त सोचता है कि अभी मैंने जान गया कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, हाँ, तो ये गलत है। यदि किसी के अंदर ये भावना आ गई कि मैं जानता हूं, कैसे बेटर जानता हूं कैसे प्रीच करना है, मैं जान गया हूं प्रीचिंग करना, सिंगिंग करना, कुकिंग करना, या फिर मैनेज करना बेटर, अच्छी तरह से जान गया हूं कृष्ण की सेवा में, तो उसको याद रखना चाहिए एक शब्द। कौन सा शब्द? विद्यार्थिनी। कौन सा शब्द याद रखना चाहिए? विद्यार्थिनी, श्रीमती राधा रानी को। राधा रानी इन द टॉप मोस्ट होकर भी सदैव निरंतर सीख रही है कृष्ण की सेवा में और बेटर करने के लिए। तो हमें भी ढीले नहीं रहना चाहिए, निरंतर हमें सीखना चाहिए, अधिक से अधिक जानना चाहिए कैसे कृष्ण की सेवा अच्छी हो सकती है। तो इसलिए ये कृष्ण भावनामृत है जो निरंतर सीखने के लिए है। प्रभुपाद ने इसलिए भागवतम क्लास प्रतिदिन दिया है, ऐसे नहीं कि ज्वाइन होने के बाद एक साल तक, दीक्षा के बाद एक साल तक भागवत क्लास अटेंड करो उसके बाद आप फुल्ली ट्रेंड हो गए हो, ऐसा है? पूरा मृत्यु तक भक्त भागवतम क्लास अटेंड करता है, अंतिम क्षण तक चांटिंग करता है, अंतिम क्षण तक डेटी वर्शिप करता है, प्रचार करता है, इसका मतलब वो निरंतर क्या कर रहा है, सीख रहा है कृष्ण की सेवा में। और हमें सीखना चाहिए उन्नत भक्तों के द्वारा, गुरु के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से। तो जब हम निरंतर सीखते रहेंगे ना कृष्ण भावना में, तो हमारी कृष्ण चेतना गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ा, दूध को बॉइल करते रहो तो कैसे होता है, गाढ़ा रबड़ी हो जाती है, उसकी स्वीटनेस बढ़ती है। तो उसी प्रकार से जो भक्त निरंतर सीखता है, लगा रहता है, तो वो भक्त का क्या होता है, उसके जीवन में स्वीटनेस बढ़ती है। हाँ, वो मधुर हो जाता है, वो डिवोटी सबके आकर्षण का केंद्र हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर प्रतिदिन सीखना चाहिए, जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी क्या करती है, निरंतर सीखती है। लेकिन आजकल कोई सीखना नहीं चाहता, आज भर्ती कल चक्रवर्ती, हाँ, आज भर्ती हो जाए और कल वो चक्रवर्ती बनना चाहता है। हाँ, जैसे एक बार एक पिता अपने बेटे को पिटाई करते जा रहा था, एक थप्पड़ मारते जा रहा था, एक के बाद एक के बाद एक पड़ोसी आ गया, अरे क्यों मार रहे हो बेचारे बच्चे को? तो वो कहता है कल इसका रिजल्ट है। तो पड़ोसी कहता है कल रिजल्ट है तो आज ही क्यों मार रहे हो? तो कहते हैं कि कल मैं आउट ऑफ स्टेशन होगा, रहूंगा नहीं यहाँ। उसको पता है उसका फ्यूचर। तो वैसे ही कृष्ण भावना मतलब प्रतिदिन सीखना, जैसे श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन सीखती है, इसलिए उनका नाम शास्त्रों में विद्यार्थिनी दिया गया है। और जो भक्त प्रतिदिन कृष्ण भावना में सीखने से वंचित रहता है वो कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम कभी कभी खोलने के लिए नहीं है। भागवतम तो हर क्षण प्रतिदिन खोलकर उसका अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान किया है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गंभीरता से श्रीमद् भागवतम का बारंबार अध्ययन करेंगे तो भागवतम में क्या प्राप्त होंगे? हमें रत्न प्राप्त होंगे। इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्राप्त होगी। जिस प्रकार से गौर गोविंद महाराज कहा करते थे कि एक मछुआरा होता है और वो जाता है समंदर में मछली पकड़ने के लिए, अपना जाल डालता है तो ऊपर ऊपर उसको केवल मछलियां मिलती हैं, लेकिन वो डीप डीप जाता है, गहरा गहरा जाता है तो उसको अमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से ये भागवतम है। इसलिए स्वरूप दामोदर कहते हैं भागवत में सस्ती वस्तु नहीं है। जहां भागवत पढ़ा वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। चैतन्य महाप्रभु के चरणों का एकमेव आश्रय स्वीकार किया और एक वैष्णव से भागवतम सीखा तो ही वास्तव में जीवन क्या है, धन्य है। तो आज हम कुछ वामन देव का आविर्भाव है तो उनकी उस लीला का वर्णन करेंगे और उससे कुछ चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी उनकी लीला का वर्णन करते हैं, वामन देव की लीला का। हम छोटे थे तो हमें ये लीला बड़ी मधुर लगती थी। स्कूल में भी बच्चों को बोला जाए तो ये वामन लीला और ड्रामा करके दिखाते थे। कितने पाव, सबको याद रहता था, बच्चे कितने पाव उठाने हैं? तीन। पहले दो सब जगह, तीसरा कहा? सर के ऊपर। तो बचपन से ही ये दिमागों में रहता था। तो लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवतम में जब हम पढ़ते हैं शुकदेव गोस्वामी के एक एक शब्द, तो पता चलता है कि कितना गहरा है ये वामन देव का जो लीला है। इसलिए अष्टम स्कंद का जो आधा बुक है वो केवल वामन देव की लीला का वर्णन करने के लिए शुकदेव गोस्वामी ने समर्पित किया है। अब पहले मोहिनी अवतार का वर्णन है, वो खत्म होते ही वामन देव की लीला शुरू होती है 15वें अध्याय से 23 अध्याय तक, और फिर उसके बाद मत्स्य अवतार का वर्णन है। तो ऐसे वामन देव की लीला का वर्णन परीक्षित महाराज के प्रश्न से शुरू होती है। परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे तो थोड़ा बहुत उन्होंने सुना इनके बारे में, और उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो भगवान है वो सारे वस्तुओं के स्वामी हैं, वही एकमात्र प्रोप्राइटर है। तो फिर उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति के भांति तीन पग भूमि मांगने के लिए क्यों गए बलि के पास, जो सब सब ऐश्वर्य पूर्ण है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन किसी भिक्षुक के भांति वो गए, क्यों मांगने गए? और चलो उनका मुंह मांगा वस्तु मिला, लेकिन फिर भी बेचारे बलि को उन्होंने बंदी क्यों बनाया? तो कहते मैं बड़ा उत्सुक हूं, आप क्या करो इसका रहस्य मुझे खोलकर सुनाओ हे शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी तत्पर होते हैं और शुकदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन अमेजिंगली या कंटिन्यूअसली करते हैं परीक्षित महाराज के लिए। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार देवताओं के बीच में और आसुरों के बीच में बड़ा संग्राम हुआ था, जिसमें बलि महाराज की मृत्यु हो गई। जब बलि महाराज मरे और उनका सारा ऐश्वर्य छीना गया था, लेकिन आसुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पास ऐसा सामर्थ्य बल या शक्ति थे जिसके द्वारा उन्होंने बलि महाराज को पुनर्जीवित किया, और पुनर्जीवित करने के कारण वो उनके प्रति कृतज्ञ हो गए।
हाँ, कोई हमें कुछ देता है तो हम कृतज्ञता उसके प्रति व्यक्त करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं शुरुआत में ही उस अध्याय के कि इसके कारण ये बलि महाराज कृतज्ञ हो गए और जिसके कारण उन्होंने उनको गुरु स्वीकार कर लिया और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा आराधना पूजा आदि में लगे रहे। तो फिर ऐसे कुछ दिन बीते तो शुक्राचार्य को लगा कि मेरा जो ये शिष्य है बलि, ये प्रॉस्परस होना चाहिए, फलना फूलना चाहिए, ऐश्वर्यवान होना चाहिए, तो क्या करें। तो उसके लिए उन्होंने एक विशेष एक योजना दी उनको कि स्वर्ग का भी राज्य जीतने के लिए उनको विश्वजीत नामक यज्ञ करने के लिए कहा शुक्राचार्य ने। और फिर ये बलि महाराज, हाँ वैसे ही महान भक्त थे कृष्ण के, तो बलि महाराज ने यज्ञ करना शुरू किया, विश्वजीत यज्ञ जिसके द्वारा पूरे विश्व को जीता जाता है। और फिर जैसे वो यज्ञ किया और शुक्राचार्य उस यज्ञ के आचार्य बने, और वैसे भी इसलिए वो यज्ञ करवाना चाह रहे थे यदि विश्व को जीत लिया तो शुक्राचार्य अपने आप में जगत गुरु हो जाएंगे, पूरे विश्व के आचार्य कहलाएंगे। तो उनके अंदर ये भी भावना थी, आज शिक्षा दे रहा हूं तो उसके पीछे भावना क्या है कि मैं आचार्य बनूं। तो फिर ऐसी शुक्राचार्य की भावना थी जिसके कारण उनको लगाया और बलि महाराज ने यज्ञ किया विश्वजीत यज्ञ। तो उस यज्ञ से सारी दिव्य चीजें प्रकट हो गई। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं सुवर्ण रथ प्रकट हो गया, येलो कलर के घोड़े प्रकट हो गए, सिंह से युक्त चिन्ह वाला ध्वजा प्रकट हुआ था, धनुष और दो तरकस अच्युत बाणों के तरकस प्रकट हो गए थे और दिव्य कवच। तो इतनी सारी चीजें प्रकट हो गई। तो उस समय प्रहलाद महाराज आए। बलि महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज। तो ऐसे प्रहलाद महाराज आए और ये देखा कि इतनी सारी दिव्य चीजें उनके लिए प्रकट हो गई है, तो उन्होंने एक ऐसी माला पहनाई फूलों की जो कभी मुरझाने वाली नहीं है, विजयी माला। तो उस माला को धारण किया, शुक्राचार्य ने उनको एक शंख दिया और ये सब प्राप्त करके बलि महाराज ने सारे वैष्णवों की, वैष्णव तो नहीं ब्राह्मणों की, भृगुवंश के जो ब्राह्मण है उनकी प्रदक्षिणा की, प्रहलाद महाराज को प्रणाम आदि किया और वहां से निकल पड़े। कहां निकल पड़े? तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने आसुरी सेनाओं को लेकर निकलते हैं। और जैसे ही वो गए स्वर्ग की जो राजधानी है अमरावती, उसके बाहर अपने सेना के साथ खड़े हो गए और इतना तेज उनका निकल रहा था मानो हजारों सूर्य आ गए हो, और अपने शंख ध्वनि करते हैं। शंख ध्वनि सुनकर ही जो अमरावती का राजा इंद्र है, सची का पत्नी, सची का जो पति है, वो डर गया इंद्र, और इंद्र कांपने लगा। पहले तो उन्होंने देखा ये तेज कहां से आ रहा है, तो इंद्र डर गया और डरकर अपने जो गुरु हैं बृहस्पति के पास जाता है और उनके पास जाकर कहता है कि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति में इतना बड़ा तेज है, मैं इसको कभी शायद परास्त नहीं कर सकता, लगता है कि मानो सारे विश्व को निगलने के लिए कोई व्यक्ति आया है, और इसकी जो आंखें हैं ऐसे लग रहा है कि उससे फायर अग्नि निकल रही हो जो सबको जला सकती है। तो उन्होंने ये सब बातें बोली और फिर इंद्र उनको पूछता है कि आप मुझे बताइए। तो कहते हैं कि क्या बताइए। तो बृहस्पति को वो बोलते हैं ब्रूहि कारण में तश दुर्दर्श कश्म द्रिपो ओजस हो बलम तेजो यत्येतत् समुद्यमः। वो कहते हैं हे गुरुदेव बृहस्पति, मेरा ये जो शत्रु है उसके पास इतना पराक्रम शक्ति प्रभाव और बल है, इतना तेज है, उसका कारण क्या है, क्या है कारण? तो एक ही शब्द में बृहस्पति बोलते हैं इसके पास शक्ति सामर्थ्य बल का एक में वो कारण क्या है, जानामि मघवन् शत्रो उरुतस्य कारणम् शिष्योपवृतम् तेजो भृगुवीर ब्रह्मवादिभिः। तो वो कहते हैं एक ही कारण है कि बलि महाराज ने भृगुवंशों के ब्राह्मण जो उनके गुरु हैं उनको अपनी सेवा आदि से संतुष्ट कर दिया है, जिसके कारण ये साधारण बलि में क्या हो गया है, त्रिभुवन में सबसे अधिक पावरफुल हो गया है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं पहली शिक्षा यह है कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बलवान तभी हो सकता है जब वो क्या करे, अपने आध्यात्मिक गुरु को अपनी सेवा आदि से क्या करता है, प्रसन्न करता है। तब उस व्यक्ति के पास या उस भक्त के पास आध्यात्मिक बल उसे प्राप्त होता है। तो उसी ये श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यश प्रसादात भगवत प्रसादो। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना को अपने निजी प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते। उस तात्पर्य में कहते हैं कि यदि किसी शिष्य के ऊपर गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है तो उसके बल पर वो कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है या कृष्ण भावना में उन्नति कर सकता है। इसलिए शास्त्र में हम पढ़ते हैं सांदीपनि मुनि के बारे में। सांदीपनि मुनि ने देखा कि ये सुदामा और कृष्ण अपना शरीर उनके पूरा प्राण देने के लिए तत्पर है। जब उनको लकड़ियों के लिए भेजा था तो रात्रि में वहां ही रहे थे, उसका मतलब है कि वो अपना लाइफ सांदीपनि मुनि के लिए देने के लिए तत्पर थे। चाहे जिए हम या मरे लेकिन सांदीपनि मुनि के लिए हम सेवा करेंगे। तो ये जब देखा दूसरे दिन सांदीपनि मुनि ने तो उनको आशीर्वाद दिया। छंदांसि आयत यामः भागवत में कहा गया है, उन्होंने कहा कि हे मेरे पुत्रो, आपको ये जो नॉलेज है ये पूरे जीवन तक ही नहीं बल्कि नेक्स्ट लाइफ तक भी ये नॉलेज क्या रहेगा, बना रहेगा। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस ज्ञान के साथ आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञान उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है या आध्यात्मिक जीवन से डिस्ट्रैक्शन ला सकता है उसके आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन ज्ञान के साथ आध्यात्मिक गुरु का यदि आशीर्वाद हो तो वो ज्ञान क्या बन सकता है, भक्ति या सेवा का कारण हो सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन से भी देखते हैं। भक्ति विकास स्वामी अपने उस बुक में भक्ति सिद्धांत महाराज की इस लीला का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक बार नवद्वीप से मायापुर बोट से जा रहे थे और बहुत इंजन आवाज कर रहा था उस बोट का। तो उस समय एक व्यक्ति उनको पूछता है, आप में और आपके गुरु में बहुत अंतर महसूस होता है, आपका गुरु जैसा करता है वैसा आप नहीं करते हो, आप कुछ अलग स्टाइल से करते हो। आपके गुरु तो गोष्ठानंदी है, बैठकर हरि नाम लेते रहते हैं और आप तो लगे पड़े हो प्रचार करने में, और आपके गुरु भजनानंदी है और आप गोष्ठानंदी है, लगता है कि बहुत भेद है। तो वहां वो इंजन का आवाज हो रहा था तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं कि इंजन देखा, इंजन की जो बैटरी है वो साइलेंट रहती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन सारा जो शक्ति है बल है सामर्थ्य वो बैटरी उसको प्रोवाइड करती है, ऊपर ही ऊपर से उसका आवाज होता है और वो दिखाई देता है। उसी प्रकार से मेरी स्थिति है, मेरे आध्यात्मिक गुरु बल के बैठे हैं एक स्थान में लेकिन वही वास्तव में मेरे प्रचार और सेवा के क्या है, स्रोत है, उनके आशीर्वाद से ही मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति माया को भी चैलेंज करने के लिए तत्पर होता है। हाँ, जैसे तीन वो थे, चूहे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे। पहला चूहा कहते आप जानते नहीं मेरे कैपेसिटी को, जानते हो आप, कहते उस व्यक्ति ने एक पकौड़े में 500 ग्राम पॉइजन डाल के रखा था मुझे पकड़ने के लिए, मारने के लिए। पहला चूहा कहता कि मैंने उसको खा लिया लेकिन फिर भी प्रभाव रहित रह गया, देखो आपके सामने जीवित हो। दूसरा कहते अच्छा तुमने तो 500 ग्राम पॉइजन पकौड़े के साथ खा लिया, कहते मेरा सामर्थ्य मेरा कैपेसिटी नहीं देखा तुमने, ये जो मनुष्य है हमें चूहों को पकड़ने के लिए जो रैट ट्रैप जो पिंजड़ा होता है वो जो रखते हैं, कहते मैं उसमें चला गया, मेरे दांतों का इतना सामर्थ्य शक्ति था कि उसको चबा चबा के पाउडर बना दिया। तीसरे को तो रहा नहीं गया, उसने कहा उसने तो 500 ग्राम पॉइजन और इसने का पूरा पाउडर, हाँ उस पिंजड़े का, अभी मैंने क्या किया बताता हूँ। तीसरा कहता है, अभी मैं जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ और सीधा बिल्ली के घर में चला जाता हूँ और उसको तंग करके आता हूँ। तो इसका मतलब वहाँ आचार्यगण कहते हैं कि ये चूहा एक जीव के समान है, बिल्ली माया के समान है। उसी प्रकार से कभी कभी हम माया को चैलेंज करते हैं और फंस जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के ब्लेसिंग से जो साधारण जीव भी माया को चैलेंज करता है उसकी स्थिति इसमें जाकर, उसके देश या स्थान में जाकर और वापस सुरक्षित आता है। प्रभुपाद है या फिर प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, किसको कहा जाओ चाइना, जाओ रशिया, जाओ यहाँ, जाओ वहां, अकेला अकेला गया है भक्त, वहां जाकर चैलेंज किया है माया को, लोगों को भक्त बना दिया है, कृष्ण भावना को स्थापित कर दिया है और वो वापस आए हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जब महाप्रभु का गुणगान करते हैं तो वो कहते हैं, कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं शात् श्री चैतन्य नमामितं। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के स्मरण से कठिन कार्य भी हल्का हो जाता है, और महाप्रभु का स्मरण या कृपा नहीं हो, महाप्रभु या आध्यात्मिक गुरु, तो जो बहुत हल्का या छोटा सा कार्य है वो भी बहुत बहुत कठिन हो जाता है। तो इसी प्रकार से बृहस्पति इंद्र को बोल रहे थे, अरे इंद्र, ये बलि का जो तेज है, सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके पीछे एक ही कारण है, उसने अपने आध्यात्मिक गुरु को क्या किया है, संतुष्ट किया है, प्रसन्न किया है सेवा आदि के द्वारा। तो बृहस्पति ने कहा कि वो जो बलि है वो ब्रह्म तेज से युक्त है और कोई भी अभी इस क्षण उसको कोई भी जीत नहीं सकता, केवल भगवान के अलावा कोई उनको जीतने में सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे यम के सामने कोई नहीं टिकता, वैसे इस त्रिभुवन में बलि के सामने भी इस समय कोई टिकने वाला नहीं है। कहते समय पलटने की प्रतीक्षा करो, तब तक देवताओं अपना स्वर्ग खाली करो और कुछ अलग अलग रूप धारण करके छुप जाओ, दिखाई मत दो, भाग जाओ यहां से। तो बृहस्पति ने जैसे बोला तो इंद्र तो बिल्कुल चिंतित हो गए। इंद्र ने कहा अभी कुछ उपाय नहीं है, बल्कि इंद्र को ना बहुत ये थी, इंद्र को अपनी दो चीजों की बड़ी टेंशन थी। एक टेंशन क्या थी, वो उसको लगता था कि मैं इंद्र बना रहूं, मेरे पोजीशन को कोई हाथ लगाने वाला नहीं होना चाहिए, मेरा प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए। और दूसरा था शतक क्रतु, ये टाइटल उनको है इंद्र को, शतक क्रतु मीन्स, क्रत मीन्स यज्ञ, तो 100 यज्ञ किए थे उन्होंने अश्वमेध, जिसके कारण इंद्र बनता है। कहते कोई और नहीं होने होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कैसे मैं अपनी इस पोजीशन को बनाए रख सकता हूं, आप बताओ। बृहस्पति को कहते हैं, तो बृहस्पति कहते हैं, एष विप्र बलोर्दर्कस संप्रत्युर्जित विक्रमः तेषमेवापमानेन सानुबंधो विनक्षति। तो बृहस्पति फ्यूचर का भी देखते हैं, जैसे गुरु है, आचार्य है, वो विजनरी, ये उनका एक विशेष गुण है, विजनरी हुए बिना कोई आचार्य नहीं बन सकता, गुरु नहीं बन सकता, वैसे बृहस्पति फ्यूचर का भी जानते हैं, देवताओं के गुरु हैं, भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने कहा एक समय ऐसा आएगा, ये जो बलि अभी इतना सामर्थ्यवान है, बलशाली है, इसका सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, सब चीजें खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगा। तो इंद्र कहते हैं क्यों, कहते एक ही कारण है, तेषाम एव अपमानेन सानुबंधो विनक्षति, इसके द्वारा अपमान होगा, किसका अपमान होगा, उसके ही गुरु का या ब्राह्मणों का, वैष्णवों का। तो यहाँ आचार्यगण कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति सारा सामर्थ्य प्राप्त करता है गुरु वैष्णव आदि को प्रसन्न करके उनकी सेवा आदि से, उसी प्रकार से व्यक्ति सब कुछ चीजों से विहीन हो सकता है जब वो गुरु और वैष्णव ब्राह्मण आदि के प्रति क्या करेगा, अपराध करेगा, तेषाम एव अपमानेन। और जब ऐसे अपराध करेगा तो उसको कृष्ण भावना के छोटी छोटी जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगी, कठिन लगने लगेगी। इसलिए एक नामा अपराध है दुर्भाग्य। इसलिए हम देखते हैं जब आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद हट जाता है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, भौतिक रूप से उसके पास कितनी योग्यता क्यों ना। परशुराम का उदाहरण आता है, कर्ण परशुराम के पास जाते हैं, कहते मुझे आप शिक्षा दीजिए, विद्या दीजिए। उन्होंने कहा मैं केवल ब्राह्मणों को विद्या देता हूँ। कर्ण चीटिंग करके आया, कहते मैं ब्राह्मण हूँ, और उनके पास से सारी शिक्षाएं ली। और एक दिन परशुराम शयन कर रहे थे, कर्ण के गोद में उन्होंने अपना सर रखा था, तो उस समय कुछ ग्रंथों में वर्णन आया है कि जो भ्रमर है उसने काटा उनका जो क्या कहते हैं इसको, थाई जो भी है गोद, हाँ पाँव को, ये एक ओर से दूसरी ओर निकला। लेकिन मैं किसी एक जगह पढ़ रहा था कि वहां वर्णन आया था कि भिक्षु ने काटा, हाँ तो ऐसे दोनों चीजें पढ़ने में आए थे। तो जब और ब्लड इतना निकल रहा था, बह रहा था, और ब्लड इतना बहा कि परशुराम जो सोए थे उनके कपड़े गीले हो गए। परशुराम ने सोचा गीले क्या हो गए, पानी कहाँ से, देखा तो ब्लड है, देखा कि इनके शरीर से निकल रहा है। उन्होंने कहा कर्ण बताओ तुम कौन हो, ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं है, हाँ ये तो क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता है। तो उन्होंने देखा कि इसने मुझे चीट किया है, जिसके कारण परशुराम ने कहा कि ये जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है जब आवश्यकता होगी ना उसी समय तुम क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। हाँ तो इस प्रकार से जो अपराध है, अवज्ञा की भावना है, उससे क्या है, हाँ सब कुछ विनष्ट होता है। एक डिवोटी ऑफेंस का जो इंग्लिश शब्द है उसको बोलते हैं ऑफ, कृष्ण भावना आपकी ऑफ हो जाएगी। और फेंस, तो कहते फेंस का मतलब है कि जो भक्तों के संग में जो फेंसिंग है उससे कृष्ण उठा के आपको बाहर फेंक देंगे, फिर आप कृष्ण भावना का अभ्यास करने के लिए रहोगे नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में सौबरी मुनि के बारे में बोला है, सौबरी ने कार्तिक में तपस्या कर रहा था, इतना अच्छा महीना, और वो भी जल के अंदर, वो भी वृंदावन में, वो भी कालिया धाम में, तो ऐसे स्थान में वो था, जल के नीचे तपस्या कर रहा था, लेकिन एक के प्रति अपराध किया, किसके प्रति, गरुड़ जी के प्रति। और उस अपराध से क्या हो गया कि वो आध्यात्मिक जीवन से हाथ को बैठ, खत्म हो गया उनका जीवन। हम देखो मछली कोई, हम एक्वारियम में जाते हैं, दो मछलियों को देखते तो हमें पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं, लेकिन भगवान की क्या योजना थी कि इनको देखने मात्र से, इन सिग्निफिकेंट चीज को देखने मात्र से सौबरी का क्या हो गया, पतन हो गया, छोटा सा कारण चाहिए। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि ये जो अपराध है जिसके द्वारा व्यक्ति निर्बल हो जाता है, एक डिवोटी कह रहे थे अपने प्रवचन में कि ये जीव गोस्वामी का उद्धृत कर रहे थे, वो कहते हैं कि व्यक्ति जब सौ अपराध करता है वैष्णव के प्रति तो वो पूरे जीवन भर वो शिकार बन जाता है असावधानी से जप करने का। और यदि कोई व्यक्ति 1000 अपराध कर बैठता है तो वो 4 नियम तोड़ देता है, और यदि व्यक्ति 10,000 अपराध करता है वैष्णव के प्रति तो उसका चांटिंग हरे कृष्ण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो चांटिंग कर ही नहीं सकता, जब करना उसका बंद हो जाता है। मैंने तो रेफरेंस नहीं पूछा कि एग्जैक्टली जीव गोस्वामी ने कौन से ग्रंथ में बोला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बृहस्पति कहते हैं तेषाम एव अपमानेन, ये अपमान करेगा तो ये बलि आज त्रिभुवन का राजा है वह विनष्ट हो जाएगा। इसलिए तो ये उनकी बात बृहस्पति की वो स्वीकार करते हैं और अनेक अनेक रूप धारण करके वहां से चले जाते हैं, और विरोचन पुत्र बलि का तीनों भुवनों पर अधिकार हो जाता है। तब ये जो शुक्राचार्य हैं, फिर से उनको एक यज्ञ में लगाते हैं, सब अश्वमेध यज्ञ। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी स्वर्ग का राजा तो बन गया था, लेकिन जो देवतागण है वो उनको अपना इंद्र स्वीकार नहीं कर रहे थे। इंद्र तो एक पद है, हाँ, इंद्र के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो राजा था। तो इंद्र पद इंद्र के रूप में स्वीकार करने के लिए वो सौ अश्वमेध करने में लग गए, हाँ, ये जो बलि महाराज है, ताकि और उनकी इतनी कीर्ति फैल गई। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं मानो चंद्रमा के समान वो त्रिभुवन में आलोकित हो रहे थे, ऐसे थे ये बलि महाराज। तो जब ये सारे देवता स्वर्ग से विहीन हो गए, दुखी बेचारे जंगल गड्ढे वड्ढे में कहां ढूंढ छुपे हुए थे, तो उनकी माँ को टेंशन आ गई। सबसे ज्यादा दुख हम बच्चों का बुरा होता है तो किसका होता है, माँ को। तो उनकी माँ थी आदिति। आदिति जोर जोर से विलाप करने लगे और वो कह रहे कि कहने लगे कि अभी कोई मेरा रक्षक ही नहीं बचा इस संसार में। तो ये जो कश्यप मुनि है ये तपस्या कर रहे थे, वो समाधि से बाहर आए और घर आए तो देखा उन्होंने कि घर में तो कोई आनंद हर्ष आदि कुछ भी नहीं है। कश्यप ने देखा, उन्होंने देखा इसका चेहरा, मेरे पत्नी का चेहरा लटका हुआ है। उन्होंने कहा मुझे लगता है तुम्हारा मन शांत नहीं है, हाँ, तो ऐसा लगता है कि तुम ऐश्वर्य से विहीन हो गई हो। तो आदिति कहती है कि वास्तव में मैं मेरे बच्चों का दुख नहीं सहन कर पा रही हूँ और सारे ऐश्वर्य से विहीन हो गई हूँ, सारा ऐश्वर्य छिना गया है। तो उसके लिए आप कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं वो सारा ऐश्वर्य मेरे पुत्र वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो कश्यप मुनि तो सेल्फ रियलाइज सोल थे, वो कहते हैं अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत। ये माया कितनी बलशाली है, यहाँ सारे जो लोग हैं अपने बेटा बेटी के चक्कर में बंधे हुए हैं, इतने सारे रस्सी से बंधे हुए हैं और ये उन्हीं को ये अपना समझ रहे हैं। तो बड़ा लेक्चर देते हैं वो ये भौतिक संसार, इसका बंधन, इन सब चीजों के बारे में। और वो कहते हैं कि ये सब मोह माया के संबंध है और वास्तव में तुम कुछ करना चाहती हो, सारी इच्छाओं की पूर्ति केवल भगवत भक्ति से ही होती है। पहले तो बहुत बड़ा लेक्चर दिया लेकिन ये अटी हुई थी, नहीं मुझे कुछ चाहिए जिसके द्वारा ऐश्वर्य वापस आ जाए मेरे बच्चों का। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो फिर उनको एक विशेष व्रत उन्होंने प्रदान किया। शास्त्र भागवत में वो एक अलग ही अध्याय है, पयो व्रत, पुत्र प्राप्त करने के लिए पयोव्रत। जीवन शास्त्र कहते वैष्णवों को करना चाहिए। तो वो पयोव्रत की साधना उनको बताए कि 12 दिन तक फाल्गुन मास का जो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तक जो स्त्री है उनको ये पयोव्रत करना चाहिए और केवल दूध पीना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आदित्य ने वैसे ही किया और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर साक्षात भगवान प्रकट हो जाते आदित्य के सामने। प्रकट हुए तो ये आदित्य कांपने लगे, कांपकर भगवान को देखते उनके सामने दंडवत किया। शास्त्र कहते स्त्रियों को दंडवत नहीं करना चाहिए, उनको कैसा करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। उसका भी रीजन शास्त्र में दिया है। तो जब इन्होंने प्रणाम किया भगवान अत्यधिक आनंदित हुए और इनको बोलना नहीं आ रहा था तो हाथ पांव ऐसे कांप रहे थे। आदित्य भगवान को स्तुति कर रहे थे और फिर भगवान उसकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में इस जगत में प्रकट होऊंगा, पुत्र बनूंगा तुम्हारा। तो जैसे ही भगवान आदित्य के गर्भ का स्थान ग्रहण करते हैं तो ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी स्तुति करते हैं और कुछ ही दिनों में भगवान इस संसार में प्रकट हो जाते हैं। आज के दिन सोनायाम श्रवण द्वादशाम मुहूर्ते अभिजीति प्रभो सर्वे नक्षत्र तारा ध्यास कुस्त जन्म दक्षिणम। तो वो कहते हैं कि आज के दिन श्रावण द्वादशी का जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें दोपहर के समय भगवान वामन देव क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और भगवान वामन देव प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। पहले ब्रह्मा आदि उनको देख रहे थे, आदिति कश्यप आदि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने पीताम्बर कमल नेत्र थे सावला रंग मकर कुंडल श्रीवत्स उनके वक्षस्थल पर था कंगन, बाजूबंद, मुकुट, करदनी, ये सबसे वो अलंकृत थे। तो ऐसे भगवान जब प्रकट हो गए थे तो सब आनंदित हो गए, ब्रह्मा, आदिति, कश्यप आदि, और ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। और आज के तिथि में प्रभुपाद कहते तात्पर्य में उस श्लोक के कि विजया द्वादशी है, हाँ, क्योंकि आज भगवान ने विजय प्राप्त किया था। तो विजया द्वादशी, तो भगवान प्रकट हुए तो सब जगह नगाड़े, वाद्य यंत्र आदि बजने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे देवी देवता। श्रीमद भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते इतने फूल डाले कि आदित्य कश्यप का घर फूलों से ढक गया, जैसे कभी कभी अभिषेक में विग्रह ढक जाते हैं फिर हम हटाते रहते हैं, तो वैसे ही ये घर उनका ढक गया फूलों से। लोग लगे थे उन फूलों को हटाने के लिए, और फिर भगवान चतुर्भुज रूप से तुरंत उन सबके सामने बटु ब्राह्मण, हाँ, छोटा वामन रूप ब्रह्मचारी का रूप वो धारण करते हैं, और फिर जो कश्यप मुनि है वो सारे संस्कार करते हैं, उनके गायत्री उनको प्रदान करते हैं, सूर्यदेव उनसे गायत्री करवाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं तो उनके अलग अलग संस्कार होने चाहिए, तो वो सारे संस्कार करते हैं, और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग गिफ्ट्स उनको देते हैं। हाँ, सूर्यदेव गायत्री करवाते हैं उनसे, बृहस्पति जनेऊ देते हैं, कश्यप मुनि मुंज और मेखला देते हैं, पृथ्वी मृग चर्म देती है, चंद्र क्या ब्रह्म दंड देता है, ब्रह्मचारी का दंडा चलने के लिए, आदिति उनकी माता कोपिन देती है उनको, स्वर्ग के देवता अम्ब्रेला देते हैं, ब्रह्मा जी के पास हमेशा कमंडलू होता है वो कमंडलू देते हैं ताकि उसको ट्रैवलिंग में पानी पीने के लिए, सूरज सरस्वती रुद्राक्ष माला देती है, कुबेर धन के देवता वो उनको भिक्षा पात्र देते हैं, भिक्षा नहीं देते लेकिन केवल पात्र है। फिर जो भगवती सती श्री माता भगवती पार्वती वो सबसे पहले भगवान इनको क्या करती है, भिक्षा प्रदान करती है, और फिर भगवान वामन अपना जो तेज है वो प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा पूरा त्रिभुवन आलोकित हो जाता है, और फिर भगवान सोचे कि अभी केवल ये खड़े रह के गिफ्ट्स लेना मेरा काम नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, असली बिजनेस क्या है मेरा, बलि महाराज के पास चलना। तो भगवान निकलते अकेले वहां से, इतना सारा ताम धाम कमंडलू ये वो सब लेके निकले। वो भागवत के इस कैंटो की शुरुआत में वो पिक्चर है, हाँ, ये प्रभुपाद ने बनवाया है, तो ये विशेष भगवान का आविर्भाव का पिक्चर है। जब भगवान प्रकट हुए तो सब लोग उनको अलग अलग चीजें दे रहे थे, तो भगवान वहां से निकले और सुखदेव गोस्वामी कहते कि एक एक पाव कदम डाल रहे थे तो पृथ्वी माता धस रही थी। तो एक नर्मदा के पूर्व उत्तरी तट पर भृगु कच्छ नामक स्थान है, वहां ये यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, उनकी ओर निकले ये जो वामन देव है। तो वामन देव जा रहे थे तो श्री संप्रदाय के एक महान वैष्णव है वेदांत देशिक, वो अपने ग्रंथ में वो लिखते हैं उनके इस चलने के बारे में लिखते हैं, कहते कि जब वामन देव निकले तो वो सोचने लगे माया मानव हरि, मतलब वो तो मनुष्य का एक रूप में निकले हुए थे उनके पास, और जाते जाते भगवान सोचने लगे अरे मैं बलि महाराज के सामने जाऊंगा तो ये लक्ष्मी तो सदैव मेरे यहाँ रहती है, कहा राइट साइड के वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह है जहाँ लक्ष्मी निवास करती है भगवान के सदैव। तो कहते मैं तो छीनने जा रहा हूं उसका ऐश्वर्य, और वो यदि लक्ष्मी है यहाँ और वो बलि को देखेगी तो उसका ऐश्वर्य कमी नहीं हो सकता, छीना ही नहीं जा सकता। तो भगवान जाते जाते कहते इसको ढक देता हूं पहले, कैसे ढके, जैसे पुजारी है, हाँ, पुजारी जब ये उत्तरिया लेते हैं हाँ तो हम राइट से लेफ्ट डालते हैं ना, तो क्यों, क्योंकि जनेऊ को कवर करते हैं, जनेऊ ढकते हैं, तो ये तो इन्होंने वैसे ही था, तो ये मृगचर के द्वारा वो ढक रहे थे, अभी इन्होंने उल्टा उन्होंने इस तरफ से ढकना शुरू कर दिया ताकि यह कौन है, लक्ष्मी है, वो ढक जाएगी तो वो देखेगी नहीं बलि को, तो उसका ऐश्वर्य में सरलता से छीन सकता हूं। तो ये गए चलते चलते और जब बलि के वहां पहुंचे, बल्कि ये जब एडजस्टमेंट कर रहे थे ना चद्दर का इधर से उधर, लक्ष्मी कहते हैं ये इतना एडजस्टमेंट क्यों कर रहा है, कौन से बंदे के लिए इतनी एडजस्टमेंट हो रही है। तो उनको पता चला कि वहां कोई है आगे विशेष व्यक्ति, और वो कौन थे, बलि महाराज। तो बलि महाराज के वहां पहुंचे तो लक्ष्मी क्या करती है, ये मृग चर्म है वो ऐसा नीचे करते और ऐसे देखती है। तो वहां वो आचार्य टीका देते हैं कि यही कारण था बलि का सारी चीजें छीन ली भगवान ने इस लीला के अंत में, लेकिन फिर भी स्वर्ग से भी सुंदर या महत सुतल लोक हम उनको प्राप्त हुआ। ये क्यों, क्योंकि जो लक्ष्मी देवी है उनकी दृष्टि थी। इसलिए श्री वैष्णवाज लिखते हैं श्री संप्रदाय में कि जो राधा रानी है या लक्ष्मी है या कोई भी माँ है, उनके तीन कार्य है इवन भगवत सेवा में भी। पहला कार्य क्या है उनका, कि वो केवल कृष्ण या विष्णु की प्रसन्नता के लिए तत्पर होती है, और दूसरा है जीव और कृष्ण के बीच में समझौता करती है, लक्ष्मी हो या श्रीमती राधा रानी या फिर आध्यात्मिक गुरु। हाँ, ये श्री वैष्णवाज कहते हैं। और तीसरी चीज है कि ऐसी लक्ष्मी सदैव अपने पर्सनल एग्जाम्पल से सिखाती है, जैसे वो स्वयं चरण दबाएगी भगवान के, ऐसे नहीं कह रहे नारायण के चरण दबाओ आप लोग मैं केवल देखती रहती हूँ, नहीं, वो स्वयं झाड़ू लेकर लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। प्रभुपाद कहते लक्ष्मी आध्यात्मिक जगत में हाथ में झाड़ू लेती है और झाड़ू लगाते रहती है, भगवान की सेवा करती है। तो माता लक्ष्मी स्वयं क्या करती है, अपने उदाहरण से भगवत सेवा सिखाती है, उसी प्रकार से उनके प्रतिनिधि चाहे वो वैष्णवाज हो या आध्यात्मिक गुरु हो। तो इस प्रकार से वो जाते हैं, भगवान जैसे पहुंचे इतना तेज आदि निकल रहा था कि जितने हजार यज्ञ जो हो रहा था, हजारों हजार ऋषि मुनि शुक्राचार्य बलि महाराज, उन्होंने देखा कि कोई सूर्य साक्षात हमारी ओर चल के आ रहा है, और ये सब लोग खड़े हो गए, खड़े होकर वामन देव की ओर चलने लगे, और वामन देव की ओर गए तो बलि महाराज ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम कर वामते, हे ब्राह्मण आपका स्वागत है, और उनको लिया आसन दिया, उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, और चरणामृत लेकर उन्होंने कहा आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे ब्राह्मण बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके लिए क्या करूँ। तो भगवान बोल नहीं रहे थे, लेकिन बलि महाराज ने और कहा कि आप यहाँ आए हो, मेरे कुल पितर वंश आदि को पवित्र किया है, और आपके जो पाद प्रक्षालित जल है उससे भी मैं पवित्र हो गया हूँ। बलि कहते मुझे लगता है आपको देखकर आप कुछ मांगने आए हो, हाँ आपकी इस मुद्रा से लगता है कि कुछ हृदय में चल रही है, खलबली मची हुई है, कुछ ना कुछ डिमांड बोलने की भावना है, कुछ आप मुझसे चाहते हो। तो उन्होंने कहा जो चाहे वो मांगो, गाय मांगो, गोल्ड मांगो, भोजन मांगो, पीने की वस्तुएं मांगो, तुम मुझे लगता है कि तुम ब्रह्मचारी हो और आपको शादी करने की इच्छा है तो सुंदर कन्या भी मैं दे सकता हूँ, ऐसे बलि महाराज कहते हैं। गांव मांगो, घोड़े मांगो, हाथी मांगो, रथ मांगो, जो इच्छा हो वो सब कुछ मांगो। तो भगवान तो हंसने लगे बलि महाराज, वामन देव हंसते हैं और वो खुश हो गए, भगवान वामन देव खुश होते हैं, और बल्कि जब इनका चरण धो रहे थे बलि महाराज वामन देव का, तो चरण धोते धोते उनके हाथ भगवान के अंगूठे की तरफ गए या नाखून आदि उस सब चीजों की तरफ। तो वहां श्रीमद् श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं चरण धोते धोते बलि महाराज को एक महान महाजन का स्मरण हो आया, और वो कौन थे, शिवजी। हाँ, वो शिवजी का स्मरण हो आया, ये देवो गिरि चंद्र मौली ददार मुर्दा परायच भक्त्या। तो वो स्मरण हो आया कि आपके चरण का जल शिवजी जैसे महान देवता भी सर में धारण करके पवित्र हो जाते हैं, तो ऐसा स्मरण हो आया शिव जी के बारे में। तो प्रभुपाद उस श्लोक के तात्पर्य में लगते हैं यही बलि महाराज की खासियत है। हाँ, एक महाजन को फॉलो करके ये महाजन बने हैं। शिव जी क्या है, अपने आप में महाजन है, उनका अनुकरण उनके जैसा कार्य करके अभी ये बलि भी क्या बन रहे हैं, महाजन बन रहे हैं। तो महाजन तभी बना जा सकता है जब दूसरे महाजन का अनुगत होकर हम कार्य करते हैं। जैसे प्रभुपाद को एक प्रभुपाद ने एक बार 12 महाजनों के बारे में बोला, तो एक शिष्य आके कहता है प्रभुपाद आप 13वें महाजन हो, प्रभुपाद कहते आप 14वें हो, इसको कहता है प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो चयन है महाजनों की ये बंद नहीं होने चाहिए, मैंने जैसे बोला है वैसे बोलो, मैंने जैसे किया है वैसे करो, क्योंकि ये मॉडर्न मेंटेलिटी क्या है चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने बोला जो मैंने किया वैसे करने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से हम देखें एक ही कुल में 2 महाजनों ने जन्म लिया है और बाय मिस्टेक वो देती से गलती हो गई थी। आजकल भागवत में चल रहा है ना, कश्यप मुनि से उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए, तो उससे गलती हो गई कि हिरण्याक्ष ने कश्यपों ने जन्म लिया, लेकिन एक दृष्टि से अच्छा हुआ आगे चल के 2 महाजनों ने जन्म लिया। कौन थे वो? प्रहलाद महाराज और दूसरे बलि महाराज। तो इस प्रकार से जब बलि ने कहा मांगो 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 तो ये हंसने लगे और फिर वो भगवान वामन बहुत प्रशंसा पूर्ण वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा अरे बलि तुम वास्तव में बहुत महान हो, क्योंकि तुम्हारे पास भृगु वंशियों के जो ब्राह्मण हैं उनका गाइडेंस है और प्रहलाद महाराज जैसे शिक्षक हैं, हाँ उनके तुम पोते हो, इसलिए जो तुम संकीर्ण मन वाले नहीं हो कि यदि कोई व्यक्ति कहे दान दूंगा और फिर कुछ और हो जाता है और वो अपना प्रतिक्रिया बदल देता है, वचन चेंज करने वाले नहीं हो, हाँ तुम वास्तव में बहुत महान हो। तो भगवान कहते मुझे चाहिए तो 3 चीजें चाहिए, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम। वो कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अभी कोई कह सकता है कि किसके पाव की भूमि? वामन कहते मेरा जितना पाव का नाप है ना, मेरे बलि के नहीं, शुक्राचार्य के नहीं, किसी और के नहीं, मेरे जो छोटे पग है उतने 3 पग भूमि मुझे चाहिए। तो भगवान ने जैसे ये बोला तो बलि महाराज हंसने लगे। बलि महाराज कहते हैं कि अरे ये तो उचित नहीं है, मैं तो सब कुछ दे सकता हूं तुम्हें, तो आपको स्वीकार करना चाहिए और मांगो, ये तो मेरा एक प्रकार से अपमान है। उनको कहते हैं कि मैं जो और चीजें आप तो मांग सकते हो, 3 पग भूमि क्यों, मैं इतना गरीब नहीं हूं, आप मुझसे और अधिक मांगो। तो जैसे ही राजा को वामन देव कहते हैं कि एक ब्राह्मण पाप में तभी फंसता है जब वो अपने आवश्यकता से अधिक वस्तु या डिमांड करता है, या आवश्यकता से अधिक दान वो क्या करता है स्वीकार करता है, जिसके कारण वो ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व गुण खो देता है और पापमय कार्यों में लिप्त होता है। तो इतनी ये बलि महाराज बोलते हैं, वामदेव ये बोले थे, तो बलि महाराज कहते हैं अरे तुम तो बच्चे लगते हो लेकिन बड़े बूढ़े व्यक्ति के समान बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, तुम ज्यादा कुछ मांगना चाहिए। फिर वामदेव कहते हैं कि वास्तव में जिस व्यक्ति की इंद्रिया अनकंट्रोल्ड है वो तीनों लोकों का जो सारा भोग है वो भी उसे प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति कभी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए असंतुष्ट रह सकता है। हाँ इस प्रकार से वो कहते हैं वामनदेव। वामनदेव कहते हैं कि आप मुझे कह रहे हो कि आप पूरा द्वीप दे सकते हो, आप 7 द्वीप में मुझे 1 द्वीप आप दे भी दोगे तो मैं उससे भी संतुष्ट नहीं होगा, मुझे लगेगा और 6 द्वीप भी मुझे चाहिए, वो आशा भी मेरे हृदय में बनी रहेगी। इसलिए वामनदेव कहते हैं पुंसोयम संस्कृतेर हेतु असंतोषो अर्थ कामयो, कि व्यक्ति का जन्म मृत्यु का बंधन केवल एक ही चीज के कारण है, क्योंकि वो भोगों से और अर्थ से कभी संतुष्ट नहीं होता। संतोषो मुक्तये स्मृतः, जब व्यक्ति संतुष्ट रहता है संतुष्ट हो जाता है तो वास्तव में ये जगत में भी वो मुक्त है, या मुक्ति उसके लिए क्या है सरल है, जन्म मृत्यु का बंधन उसके लिए सरल है। इसलिए जो वामन देव वो कहते हैं, जो भक्त है या ब्राह्मण है उसका तेज घट जाता है जब वो असंतुष्ट होता है, और उसका तेज बढ़ता है जब वो क्या करता है, जो भी चीजें उसे मिले उसमें संतुष्ट रहता है। तो ये एक लेसन है कि भक्तों को संतुष्ट होना चाहिए हर परिस्थिति में। जैसे सुदामा थे, सुदामा के पास धन नहीं था, उतनी ही संतुष्टि थी। भगवान से मिलने के बाद बहुत अपार धन संपदा आ गई, फिर भी संतुष्टि थी। प्रभुपाद कहते क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा की संतुष्टि थी, ये धन की संतुष्टि नहीं थी। कृष्ण सेवा से वो संतुष्ट थे, इसलिए उसके पास धन आए या ना आए वो किसी भी परिस्थिति में अस्थिर नहीं हो सकते। जैसे गोस्वामी गण है, उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए लेकिन वो पेड़ के नीचे ही संतुष्ट थे। प्रभुपाद थे, उनके शिष्यों ने उनके लिए बड़े बड़े प्रभुपाद हाउस सारे जगह बना दिए लेकिन प्रभुपाद संतुष्ट थे कृष्ण की सेवा में। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद ने सोचा अभी बूढ़ा हो गया हूँ, इतना अच्छा घर बना दिया है मेरे लिए, यही रहूंगा अभी कुछ नहीं। वो संतुष्ट थे, कृष्ण की सेवा ही उनकी परम संतुष्टि थी। इस प्रकार से जब ये चर्चा हुआ तो फिर बलि महाराज हंसे और उन्होंने क्या किया, दान देने के लिए वो उठा लिया जल पात्र। जैसे आप दान देते हो तो शास्त्र कहते हैं, या विग्रह दान करते हो किसी को तो तुलसी पत्र डालो, जल डालो और दूसरे के हाथ में बहा दो, तो इसका मतलब आप उनको पूरी तरह से दान प्रदान किया है वो जो वस्तु है। तो वैसे ही जल पात्र लिया और जल देने के लिए तैयारी थे। हाँ, तो उस समय ये शुक्राचार्य आए और कहते हैं तुम्हारी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई? शुक्राचार्य कहते अरे मेरी बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, ये विष्णु है, विष्णु ये सब कुछ तुम्हारा छीन लेगा और वो जो देवता है ना उनको सब कुछ देगा, ये उनका हित करने वाला है। देवानाम कार्य साधका, ये किसी का कार्य करने वाला है, देवताओं का, इसलिए वो आदित्य के गर्भ में इसने जन्म लिया है। अभी ब्रह्मचर्य बालक बन के यहाँ आया है मांगने के लिए, तो फिर भी वो अस्थिर नहीं हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, और उन्होंने पहले बोल दिया था शुक्राचार्य ने, पहले पक्ष सारा पाताल पृथ्वी लेगा, दूसरे पक्ष से पूरा आकाश आदि लेगा, फिर तीसरा पक्ष कहाँ रखाओगे इसका। हाँ, तो ऐसे जब बोला, और क्योंकि इनके पोजीशन को खतरा हो रहा था, ये गुरु थे, उनको लगा मेरा शिष्य गरीब हो जाएगा तो मुझे दक्षिणा कहाँ मिलेगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वो गुरु परंपरा कैसे शुक्र आचार्य वंश परंपरा, जैसे जात गोस्वामी गौड़ियाज में भी जात गोस्वामी है, नित्यानंद वंश, अद्वैत वंश, ये वंश वो वंश, तो वैसे ही शुक्राचार्य वंश परंपरा है गुरु की, वो आध्यात्मिक तत्ववेत्ता के आधार पर नहीं है। तो जब इन्होंने कहा मत दो मत दो, इतना ही नहीं लेकिन बलि ने कुछ सुना नहीं, बलि ने कहा मेरा तो अहो भाग्य है, साक्षात भगवान विष्णु आए हैं जो सब चीजों के स्वामी हैं, तो मैं उनको सब कुछ प्रदान करूंगा। लेकिन इनसे रहा नहीं गया, फिर भी जल का पात्र जब बलि ने उठाया, भगवान वामन देव के हाथ में जल डाल ही रहे थे, तो जो उसका छेद होता है ना पानी नीचे गिरने का, शुक्राचार्य उस छोटे बन के उसके अंदर घुस गए, वो छेद के अंदर जाके बैठ गए, पानी गिरे ना, बलि महाराज डाल रहे पानी नहीं गिर रहा है। तो भगवान वामन देव ने कुशाग्रास निकाला, कुशाग्रास उनको दिया हुआ था, कुशाग्रास निकाला लंबा, वो घुसा दिया अंदर, और वहां कहते सीधा शुक्राचार्य की आंख फोड़ डाली। हाँ, ऐसे गुरु की चक्षु दान दिले जाए नहीं, उनके पास चक्षु ही नहीं है तो क्या दान देंगे अपने शिष्य को, आंख फोड़ डाली। और तब से कहते पुराण वर्णन करते हैं आज तक शुक्राचार्य एक आंख वाले हैं, एक ही आंख है उनकी जो काम करती है। तो बलि महाराज ने जल अर्पित किया, उनकी पत्नी आई विंध्यावली सुवर्ण पात्र लेकर, पुनः भगवान के चरण धोए आदि, और द्वेष रहित होकर देवतागण सोचने लगे कैसा व्यक्ति है, किसी भी थोड़े भी द्वेष और मेरा या अपने ये सब भावना किसी के प्रति नहीं है, ऐसा व्यक्ति देवता लज्जित हो गए कि हम ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बलि का ऐश्वर्य देखो। तो बलि महाराज बिना किसी द्वेष ईर्ष्या आदि भावना से केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए देने के लिए तत्पर हो गए, और जब उनके चरण आदि धोए तो भगवान ने अपना असली रूप प्रकट करना। अभी बटु थे अभी फिर से क्या हो गए, तुरंत बड़े हो गए, इतने बड़े, भागवत में पूरा अध्याय है कहाँ क्या हो गया, उनके हाथ पांव सर आदि का वर्णन है, इतने विशाल हो गए। फिर कहते बलि अभी पांव डालो, तो बलि कहते हाँ, तो एक पांव में पूरा नीचे पाताल पृथ्वी ले लिया, नीचे के लोग सब तक, और फिर दूसरे पक्ष से पूरे ऊपर के लोग ले लिए। ऐसा वर्णन आता है कि उनका चरण वो पंच जो कवरिंग से ब्रह्मांड की वो छेद गए, अंगूठे से छेद, नाखून से छेद पड़ा उस ब्रह्मांड को, कारण सागर का जल इस संसार में आया, आगे चलकर वो गंगा कहलाया। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष से तो सब कुछ ले लिया, और फिर ये आसुरों ने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो आसुरों को मारने के लिए भगवान को सारे शस्त्रास्त्र उठाए। बलि कहते नहीं नहीं, ये मेरे असली हितेशी है। तो फिर उस समय गरुड़ ने भगवान की इच्छा को जाना और वरुण पाश से बांध डाला बलि को, घसीटते घसीटते ला दिया। वहां कहते कि देखो पूरा जो गर्व आदि है, जो ऐश्वर्य पद आदि सब चकनाचूर हो रहा था, देवताओं के सामने, अपने आसुर लोगों के सामने, परिवार जनों के सामने, सब कुछ नेस्ता नाबूद हो रहा था, मतलब पूरा खोल दिया, उनको दुखी कर दिया, इतना अपमानित किया, आज तक इतना अपमानित कोई नहीं हुआ जितने बलि महाराज हुए। तो फिर भगवान कहते हैं कि हे बलि बताओ तीसरा पग किस पर डालो। तो वो सोचते हैं, बलि महाराज सोचते हैं, और वास्तव में बलि महाराज फिर कहते हैं कि ये तीसरी चीज मैंने तो अपनी चीजें दी, लेकिन मेरा शरीर नहीं दिया। और सूक्ष्म रूप से प्रभुपाद कहते हैं अहम की भावना, हम सब कुछ दे सकते हैं दूसरों को, भगवान को भी दे सकते हैं, सारी चीजें समर्पयामी, लेकिन अहम अहम जो भाव है ना, वो कभी अर्पित नहीं करते, या सोचते ये सब कुछ मेरा है या मैं दे रहा हूं, लेकिन अहम को हम भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहते। और अहम का स्थान कहाँ है, इस सर्व में है। इसलिए जो बलि महाराज है भगवान वामन को कहते हैं पदम तृतीयम पुरु शीर्षणी में निजम, कि आपका जो तृतीय पद है शीर्षणी मेरे सर पर रखिए, हाँ मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूं। तो उनके सर पर वो पाव रखते हैं, और वास्तव में भगवान का चरण किसी के सर में पड़े तो उसका अशुभ थोड़ी हो सकता है, शुभ ही शुभ है। बल्कि इतने लज्जित होना पड़ा था, अपमानित होना पड़ा था बलि महाराज को, बाहरी रूप से देखा दिखाई दे रहा था कि तो क्या इनका लाइफ है, लेकिन आंतरिक रूप से बलि महाराज इतने आनंदित थे, उनको किसी संसारिक व्यक्ति के क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उसकी परवाह नहीं थी। वो भगवान के इसमें इतने अधिकतर डूबे थे क्योंकि उन्होंने आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण किया था, बल्कि वो अपनी प्रशंसा करने लगे, वो कहने लगे कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, हाँ कि भगवान ने इतनी अधिक कृपा मुझ पर की है। तो जब इनको बांधा हुआ था, इतना सब कुछ हो गया, तो प्रहलाद महाराज वहां आते हैं, और प्रहलाद महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं, और प्रहलाद महाराज के आंखों से आंसू बहते हैं, बड़ा विस्तृत वर्णन है भागवतम में। फिर प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वो कहते हैं कि वास्तव में ये बलि बहुत कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति रहा है, क्योंकि आपकी कृपा का लक्षण क्या है, हरिषे तद धनम क्षणे, प्रहलाद कहते हैं कि आपके इनका सारा ऐश्वर्य धन सब कुछ आपने छीन लिया है और इन्होंने आपकी कृपा प्राप्त की है। फिर बलि महाराज की पत्नी आके प्रार्थना करती है, तो इस प्रकार से ये सब होता है। फिर भगवान कहते हैं कि हे बलि हाँ मैंने तुम्हारा सब कुछ छीना है, लेकिन उससे श्रेष्ठ चीज मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। आगे आने वाला जो सावर्णी मनु है उस समय तुम इंद्र बनोगे, लेकिन अभी तब तक 36,000 साल तक सूतल लोक में जाकर निवास करोगे और वहां उपभोग करोगे। सूतल लोक जो स्वर्ग लोक से भी अधिक सुंदर वगैरह है। तो भगवान कहते हैं मैं सारा ऐश्वर्य अपना तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरा चक्र सदैव तुम्हारे पास रहेगा और स्वयं मैं भी तुम्हारे दरवाजे में द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा। हाँ तो भगवान हम भेजते हैं उनको, प्रहलाद महाराज को कहते हैं आप भी सूतल लोक जाइए उनके साथ रहे। तो प्रहलाद और ये विंध्यावली सब लोग सूतल लोक में जाके निवास करते हैं और भगवान क्या करते हैं वहां वैकुंठाधिपति कृष्ण सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े रहते हैं। आचार्यगण कहते वास्तव में देवताओं को इनको सूतल लोक भेजते और देवताओं को वामन कहते कि ले लो अपना ऐश्वर्य स्वर्ग लोक। तो आचार्यगण कहते कि वास्तव में जो विजयी हुए हैं बाहर रूप से लगेगा कि देवताओं की विजय हो गई है लेकिन वास्तव में देवता क्या हो गए थे पराजित हो गए थे। उनके पास में भी सारी सुविधा ऐश्वर्य सब कुछ आ गया था लेकिन असली विजय किसी की हुई थी तो वो बलि महाराज की हुई थी। हाँ क्योंकि साक्षात भगवान उनके पास थे तो भगवान वहां ही खड़े थे उनके द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं। हाँ तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के दिन भगवान वामन देव प्रकट होते हैं उनका हित करने के लिए। हाँ तो ऐसे भगवान वैकुंठाधिपति द्वारपाल बन के उनके दरवाजे में खड़े रहते तो लक्ष्मी को याद आया। लक्ष्मी कहती है आध्यात्मिक जगत में अरे मेरे पति गए कुछ लीला करने वो अभी तक वापस नहीं आए। कहते लीला भी तो खत्म हो गई कहाँ है। तो जाती आती है देखती तो कहाँ सूतल लोक में सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। इतना दुख माता अपने पति का दुख पत्नी से नहीं देखा जाता। तो लक्ष्मी देवी हाँ लक्ष्मी आई तो बलि महाराज ने उनकी पूजा भी की। फिर लक्ष्मी देवी उनको रिक्वेस्ट करती है बल्कि आचार्य कहते ऑर्डर दे सकती थी वो। लक्ष्मी देवी उनको रिक्वेस्ट करती है और वो कहती है कि हे बलि मेरा जो पति है ना बहुत दौड़ता है पसीने पसीने हो रहा है मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सूतल लोक में बलि महाराज का जो महल था उसमें कई दरवाजे थे और किसी भी दरवाजे से बलि बाहर आ सकते थे इसलिए भगवान इस दरवाजे में दौड़ रहे हैं। अरे वहां से आएंगे वहां दौड़ रहे हैं यहाँ से आएंगे तो ऐसे दौड़ते जा रहे थे सारे दरवाजों में क्योंकि उनको अपनी सेवा निभानी है। ये भगवान का अफेक्शन या लव जो भक्त के प्रति वो कृष्ण दिखाते हैं। तो ऐसे दौड़ दौड़ के पसीने पसीने वैकुंठाधिपति कृष्ण के निकल रहे थे। लक्ष्मी कहते ये नहीं देखा जा रहा है। बलि को कहते बलि प्लीज केवल एक ही दरवाजे से बाहर निकलो ताकि मेरा जो पति है वो एक ही जगह खड़ा रहे भगवान नारायण या कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान ये विशेष लीला प्रकट करते हैं या आज के दिन आविर्भूत होते हैं और सारे जगत को सिखाते हैं आत्मसमर्पण का जो भाव है जो बलि महाराज ने हम प्रकट किया है। तो आज के दिन जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव है। छह गोस्वामियों से एक विलास मंजरी है भगवान कृष्ण की लीलाओं में। हाँ तो आज बहुत ही पवित्र दिन है भगवान का आविर्भाव और उनके भक्त का आविर्भाव जो हमें पवित्र करने के लिए है। तो इन सारे लीलाओं का उद्देश्य क्या है? आचार्य गण कहते हैं इंस्पिरेशन कि हमें केवल प्रेरणा हम प्राप्त करें जिसके द्वारा हम कृष्ण को और अच्छे से सेवा कर सके या फिर उनके प्रति समर्पण का जो भाव है वो बढ़ा पाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वामदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के श्रील जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद के समवेत गौर भक्त वृंद की गाय गौर प्रेमानंदे।